2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो गुजरात की 26 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, और अब निगाहें 2019 पर लगी हुई हैं। बीजेपी यह पूरी तरह से आश्वस्त है कि एक बार फिर से वह अपना करिश्मा दिखाएगी और पूरी 26 सीटें वह जीतेगी, लेकिन गुजरात में कांग्रेस का यह कहना है कि अब बीजेपी का हम सपना यह पूरा नहीं होने देंगे। हमने जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को ट्रेलर दिखाया है, अब लोकसभा चुनाव में उसे पूरी पिक्चर दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे, और कांग्रेस का यह कहना है कि जो परिणाम आएगा वह सबको चौंका देगा। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर सोनू कनौजिया जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या यह संभव है।
देखिए रवि, जिस तरह से मैंने अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में एक बड़ी ही यूनिक चीज़ हमने देखी थी। कांग्रेस के साथ वहां पर तीन बड़े चेहरे थे, एक तो अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल। ये तीन चेहरे गुजरात में कांग्रेस के साथ थे, और यही जो तीन चेहरे हैं, इन तीनों चेहरे ने गुजरात में पूरा गेम घुमा दिया था। और मुझे लगता है कि जो गेम हुआ था हाल ही के विधानसभा चुनाव में, मुझे लगता है उसी को देखते हुए कांग्रेस ने ये बयान दिया है। और जाहिर सी बात है, ये बयान देना बनता भी है, क्योंकि जो बीजेपी लगभग 120 की सीट थी, उस बीजेपी को लगभग 21 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा विधानसभा चुनाव में। 99 पर आकर बीजेपी रुक गई। तो ये जाहिर सी बात है कि एक ट्रेलर तो सच में दिखाया गया था, लेकिन वो सिर्फ कांग्रेस के दम का दम नहीं था, वो असली दम था हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर का। ये जब तीन चेहरे कांग्रेस के साथ मिले तो गुजरात का मूड ही एक तरह से बदल दिया गया। गुजरात में अल्पसंख्यक, पाटीदार, इसके अलावा दलित, ये जो समुदाय के लोग हैं, इन लोगों ने इन तीनों नेताओं के को अपना नेता चुना। हालांकि बड़े पैमाने पर जीत नहीं हुई, लेकिन ये भी है कि वोट बैंक, बहुत सा वोट बैंक जो है वो शेयर हो गया, कांग्रेस के पक्ष में गया, कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिली गुजरात में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की वो स्ट्रैटेजी वहाँ पर काम आई, और कांग्रेस ने अब उसी स्ट्रैटेजी को आने वाले लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करने की सोची है। अगर इसी तरह से अगर चलता रहा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस 26 में से कई सीट, हो सकता है कि 10 से 12 सीट जो है वो हासिल कर सके। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी चुनाव की बड़ी खिलाड़ी है, उनकी रणनीति बहुत अलग होती है, और लास्ट मोमेंट पे पूरा का पूरा जो चुनाव है वो पूरा का पूरा मोमेंटम अपने पास ले लेती है बीजेपी। तो इस बात पर भी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स को देखकर अगर मैं कहना चाहूँ तो हाँ, जाहिर सी बात है कि एक ट्रेलर तो दिखा था जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को फ़ायदा हुआ था, और यही ट्रेलर अगर आगे दिखाना है, आगे पूरी फिल्म दिखानी है, तो कांग्रेस को इन सभी नेताओं को एकजुट, एक साथ रखना होगा।
देखिए, हार्दिक पटेल ने पटेल समुदाय को, जिग्नेश मेवानी ने दलितों को, और अल्पेश ठाकुर ने ओबीसी समाज को, इन तीनों पर यह आरोप लगा कि इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेली और राजनीति को एकदम निचले स्तर तक लेकर गए। यही वजह हुआ कि इन लोगों को कांग्रेस की बी टीम भी कही गई, और अल्पेश ठाकुर ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस को, उन्होंने उसका दामन भी थाम लिया, अब वे राधनपुर से विधायक वहां पर चुने गए हैं। जो बीजेपी को हराने का सपना आज कांग्रेस जब देख रही है, लोकसभा चुनाव में कह रही है कि हम उन्हें हराएंगे, क्या लगता है कांग्रेस की अब फिर से वही स्ट्रेटजी होगी कि लोगों को तोड़ा जाए, जाति पाति के आधार पर लोगों को बांटा जाए और तब जाकर वोट ली जाए? क्या यही कांग्रेस की स्ट्रेटजी है या कुछ और है?
देखिए, ये स्ट्रेटजी तो कांग्रेस की भी है और बीजेपी की भी है, ये हर एक पार्टी यही करती है, लोगों को जात और धर्म के नाम पर बांटती है। ये हर हमारे पॉलिटिकल पार्टी का ये एक मेन मोटिव है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वोट मांगना, ये तो कॉमन ही है। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजी वाइज अगर मैं देखूँ तो स्ट्रैटेजी वाइज भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपको हिंदू समुदाय को अपने साथ लेना है तो आपको एक ऐसा चेहरा बनाना पड़ेगा जो हिंदू समुदाय को पोर्ट्रेट करता हो, तो एक वैसा चेहरा बना जाए। दलित वोट बैंक को लुभाना है तो आपको जिग्नेश मेवानी को आगे रखना होगा, ओबीसी को अगर करना है तो अल्पेश ठाकुर को आपको आगे रखना है, पाटीदारों को अपने साथ लेना है तो हार्दिक पटेल को आगे रखना है। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस को ज़रूर अपनानी चाहिए, और कांग्रेस भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इस अच्छी खासी स्ट्रैटेजी जो चल रही है, जो वर्कआउट हो रही है, उसको छोड़ के कोई और स्ट्रैटेजी पर काम करेगी। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि जो ट्रेलर दिखाया गया था विधानसभा चुनाव में, उसकी पूरी पिक्चर हम लोकसभा में दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी विधानसभा चुनाव में फोकस की गई थी, वही स्ट्रैटेजी लोकसभा चुनाव में फोकस की जाएगी। और अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, इन्हें बड़े पैमाने पर गुजरात में लॉन्च किया जाएगा, ताकि गुजरात में जो अल्पसंख्यक दलित और पाटीदार हैं, उनका वोट शेयर जो है वो पूरी तरह से कांग्रेस और इन नेताओं के पास आए और बीजेपी को इसका नुकसान हो। वहीं अगर गुजरात में अगर मैं बात करूं तो एक और नुकसान बीजेपी के लिए है, वो है प्रवीण तोगड़िया। प्रवीण तोगड़िया ने भी एक नया संघ बनाया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की खोज में कांग्रेस के पास प्रवीण तोगड़िया चले जाए, तो कांग्रेस के पास वो भी एक बेनिफिट है। यानी कि देख लीजिए, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और प्रवीण तोगड़िया, ये चार बड़े चेहरे अगर कांग्रेस को मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटों पर जीत भी मिल सकती है।
इन सबको रोकने के लिए नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान है?
देखिए, नरेंद्र मोदी अपने आप में एक प्लान है। नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए उतरते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, और मोमेंटम शिफ्ट होने के लिए उनके पास पूरी उनकी टीम है। अमित शाह जो अच्छा खासा रणनीति बनाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये दो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हावी होंगे चुनाव में। और जिस तरह से जो उनके स्टार कैंपेनर्स होंगे, मुझे लगता है कि स्टार कैंपेनर्स में नितिन गडकरी होंगे जो गुजरात में प्रचार करेंगे, इसके अलावा राजनाथ सिंह वो भी प्रचार करेंगे, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मनोहर पर्रिकर जो सात सूत्री छवि वाले इमेज है, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा योगी आदित्यनाथ को गुजरात में लेकर जाया जाएगा, और कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए योगी आदित्यनाथ को सामने रखा जाएगा, जिस तरह से कर्नाटक में किया गया। तो मुझे लगता है ये चार पांच चेहरे हैं जो बीजेपी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होंगे, और मुझे लगता है कि बीजेपी भी कोई ना कोई ऐसा लीडर वहां पर बनाएगी जो अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल को टफ दे सके।
निश्चित तौर पर देखिए, विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो लोगों को ये लगता था कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो खुद बीजेपी के माथे पर भी पसीने छूटाए कि असल ये हुआ कैसे, जिसे पूरा करके दिखाया राहुल गांधी उनकी टीम ने, और अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, और हार्दिक पटेल का तो कहना है कि प्रवीण तोगड़िया और संजय जोशी ने भी उनकी मदद की थी। लेकिन बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए, लोकसभा चुनाव आने वाले कुछ समय में है, और जो गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी राजीव सातव, उनका ऐसा कहना है कि वे गुजरात में जो हर एक पार्टियां हैं, जो भाजपा विरोधी पार्टी है, कुछ भी करेंगे, सबको साथ लेंगे और चुनाव में सबके साथ के जरिए बीजेपी को हराएंगे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीति खूब गर्माने वाली है, न सिर्फ गुजरात की बल्कि देश भर की। क्या लगता है आपको, क्या होगी लोकसभा चुनाव में राजनीति, क्या होंगे बनते बिगड़ते सियासी समीकरण? आप हमें कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बरेली एचडब्ल्यू न्यूज़ के साथ नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।